चार कुमारों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन माँ पार्वती शंकर की गोद में बैठी हुई है। चित्रकेतु हंस पड़ा ऊपर से कि देता है वेदों का उपदेश और चार कुमारों को और गोद में पत्नी को बिठा के बैठा है लेप के ऊपर। चित्रकेतु हंसा, शंकर जी तो मुस्कुराए, लेकिन पार्वती को क्रोध आया कि संसार में अब हमको ये शिक्षा देने के लिए रह गया है। ये शंकर जी को शिक्षा देता है कि कौन किसी गोद में बैठा हुआ है, अरे ये असुर हो जाओ। पार्वती के शराब से वो चित्रकेतु जो संकर्षण का दर्शन करके आया था वो वृत्तासुर बना था। भक्ति पहले उसकी की हुई थी, लेकिन माँ पार्वती को जाके प्रणाम करके चित्रकेतु कहता है, माँ मैंने अपराध किया है, अच्छा किया आपने मेरे को शराब दे दिया। शंकर जी तो उनके जाने के बाद पार्वती को कहते हैं, पार्वती देखो कितना महान वैष्णव है, शराब वो भी दे सकता था, उसके पास भी शक्ति थी, लेकिन अपनी गलती मान के चला गया है। वो वृत्तासुर तो बनेगा, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये वृत्तासुर की कथा ऐसे पूरी होती है कि भगवान कैसे रक्षा की, वृत्तासुर की असुर के रूप में रक्षा कर ली, इंद्र की रक्षा कर ली इंद्र को बचाकर, और तब दो अध्यायों में देवताओं की माता आदिति प्रार्थना करती है कि हमारे पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति का यह विधान है। आपको एक बार बता, यहां दो अध्यायों का वर्णन करके फिर सातवें स्कंद में प्रवेश करना है। पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, सात अध्यायों में, सातवें स्कंद में, इसके बाद 15 अध्यायों में प्रहलाद महाराज भक्त का चरित्र है, पांच अध्यायों में असुर हिरण्यकश्यप का चरित्र है, 5 अध्यायों में वर्ण आश्रम नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को शिक्षा देती। तो प्रहलाद और नरसिंह की कथा आज कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रहलाद ने अपनी मां के पेट में, नारद जी से कयादु के पेट में भगवान की भक्ति को सीखा था। जब छोटे 5 साल के बालक प्रहलाद से पूछते हैं असुरों के बेटे के, हमारा तो गुरु ये है शंड और अमरक और ये शुक्राचार्य, आप जो ये राम राम हरे कृष्ण जपा रहे हैं, नारायण नारायण, ये कहां से सीख के आए? तब प्रहलाद बोलता है, जब मेरा पिताजी तपस्या करने गए थे तब इंद्र मेरी मां को उठा के ले जा रहा था, नारद ने उसकी रक्षा की थी, नारद के आश्रम में मेरी मां रहती थी, मैं मां के गर्भ में था और नारद की भक्ति में मैं मां के गर्भ में सीख के आया। 3-4 दिन पहले हमने आपको कहा था, अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह अर्जुन से रात को सुना था, और आज ये दूसरा उदाहरण है, प्रहलाद में ने नारद से भक्ति अपनी मां के उदर में सीखी थी। इसलिए गर्भवती माताओं को भागवत रामायण पढ़नी चाहिए ताकि उनके बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव हो, घर के अंदर वातावरण ऐसा, गर्भवती स्त्री के चारों ओर भगवान के सुंदर चित्र लगे होने चाहिए, बाल गोपाल का, राम का, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि उसका मन के ऊपर सारी भगवान की कथाएं बनी रहें, तो उसके उदर में होने वाले बालक को शिक्षा मिलती है। नहीं तो आजकल के घरों के अंदर वो बॉक्सिंग वाले भूतों के फोटो और ऐसे जबड़ा खुला हुआ वाले फोटो या टीवी के अंदर देखेंगे तो जो बच्चे पैदा होंगे वो ऐसे ही होंगे जैसे आपके चारों ओर वातावरण है। फिर मत कहना कि बेटा हमारी बात नहीं मानता है, क्योंकि भूतों को देख के भूत ही पैदा होंगे। नहीं, गृहस्थियों के लिए धर्म। फिर प्रहलाद महाराज को पिताजी मारने लगा, लेकिन भगवान खंभे के अंदर से प्रकट होकर नरसिंह देव ने उनकी रक्षा की। ये तो कथा, कभी समय होगा तो अपने आप में 7 दिन चलेगी, इतनी है। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, गृहस्थियों के लिए क्या उत्तम धर्म है, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा? तब सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से गृहस्थियों के लिए बोलते हैं कि उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए। पहले गृहस्थियों के लिए सबसे पहला धर्म है वासुदेव अवतार कथा, ये अगर सुनेंगे तो उनका मन भगवान की तरफ जाएगा, संसार से थोड़ा मन आस्ते आस्ते उठ के भगवान में लगना शुरू होगा। फिर कहते हैं नारद जी कि युधिष्ठिर महाराज गृहस्थियों को कभी थोड़ा टाइम निकालकर घर के काम से तीर्थ स्थानों का दर्शन करना चाहिए, साधु के संग में जाके कभी टाइम निकालना चाहिए, ऐसे करने से गृहस्थों को ये पता लग जाएगा कि हम जब 15 दिन यहां से कोई भारत में चला जाएगा हरिद्वार दर्शन करने, मथुरा में जाएगा वृंदावन दर्शन करने, तो उसको वापस जब आएगा देखेगा ये मेरा घर चल रहा है, ये मेरे बेटे खा पी रहे हैं, ये दुकान भी चल रहा है, इसका मतलब आपको विश्वास हो जाएगा जब हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी। हम तो सोचेंगे कि हम घर नहीं छोड़ेंगे, तो हम घर में नहीं रहेंगे तो ये लोग सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन हमारे जान से कोई भूखा नहीं मरता है और अच्छी तरह से दुखी रहते हैं। हम नहीं होते हैं तब तो हलवा पका के खाते हैं, हम होते हैं तो ब्रेड मंगा के खिलाते हैं, तो बच्चे तो बड़े खुश होते हैं कि हम जाएं तो वो पिकनिक मनाने जाएं। तो नारद जी कहते हैं कि थोड़ा समय गृहस्थियों को ऐसे बाहर घर से निकलना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, और फिर कहते हैं कमाई का ज्यादा शाम घर में इकट्ठा नहीं करना चाहिए धन, नहीं तो झगड़े होंगे। कुछ दान पुण्य हमें गृहस्थी को सदा के लिए करते रहना चाहिए, ऐसे गृह दर्शन का धर्म का उपदेश दिया। आठवें स्कंद के अंदर पहले 5 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ऋषि अगस्त के आने के ऊपर उठा नहीं, तपस्या कर रहा था, उसने बोला हाथी जैसा बन गया है, किसी का सम्मान नहीं करता है, हाथी बन जाओ। वो गजेंद्र बना, लेकिन भक्ति की हुई थी। दुख में जब आ गया, हथनियों के साथ नहाने गया सरोवर के अंदर, तो क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। मगरमच्छ पानी में रहने वाला, हाथी जमीन के ऊपर रहने वाला, हाथी का बल कम होने लगा, हाथी की एनर्जी कम होने लगी, पावर कम होने लगा, मगरमच्छ का पावर बढ़ने लगा। सब साथी साथ छोड़ के चले गए, हाथी का पांव मगरमच्छ के मुंह में है और हाथी भगवान को प्रार्थना करता है। ये हाथी और मगरमच्छ तो उस जमाने में हुआ, आप और हम भी इस दुनिया में जहां रह रहे हैं ये मृत्यु संसार है, हम सबका पांव मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है, और यहां मृत्यु के दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं, हमारे दिन कम होते जा रहे हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करना सीखेंगे तो कभी भी इस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। मृत्यु के मुंह में सबका पांव है कि नहीं है? एक चित्र छपा था किसी वक्त में, एक सांप का, और सांप के मुंह के अंदर एक फ्राग था, मेंढक, और मेंढक सांप उसको खा गया था, उसका केवल मुंह बाहर था, लेकिन बाहर मुंह से मेंढक अपने टंग को बाहर निकालकर जबान को कुछ खा रहा था। नीचे लिखा था मरता है फिर भी भोग नहीं छोड़ता है। ऐसे हम में से जितने यहां बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, 75% तो पहले से ही सांप के मुंह में चला गया हूं, 25% बाहर मुश्किल से रहा है, उससे भी कम रुका हुआ है। मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, मृत्यु ने सबको, किसी को 30 साल तक, किसी को 40 तक, किसी को 50 तक निगल लिया है, फिर भी हम भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, प्रार्थना करनी चाहिए। गजेंद्र ने गोविंद का उच्चारण किया, जो उसको पहले भक्ति की थी याद आई, भगवान गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए, एक फूल उठाकर हाथी ने भगवान को अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से एकदम क्रोकोडाइल का गर्दन काट दिया, क्रोकोडाइल मर गया, और क्रोकोडाइल से हू नाम का गंधर्व बाहर निकला। गजेंद्र कहता है प्रार्थना करके बुलाया मैंने और उधार पहले उसका कर दिया। बोला वो भी भक्त था, उसका उधार भी आज होना था, आप अब हाथी जोड़ी से मुक्त होकर वापस मेरे धाम जाओ। तो ये पहले 5 अध्यायों में गजेंद्र मुक्त की बात है, और उसके बाद समुन्द्र मंथन की बात है। समुन्द्र मंथन का मतलब है जब भगवान कृपा करते हैं तो जो कुछ है सबको बांट देना चाहिए। समुन्द्र मंथन से अमृत निकला जो देवताओं को मिला, समुन्द्र मंथन से कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को मिली, समुन्द्र मंथन से लक्ष्मी मिली जो भगवान विष्णु को वर्ण किया, और समुन्द्र मंथन से ये चंद्रमा निकला। ऐसे 14 रत्न समुन्द्र मंथन से निकले और वो सबको बांट दिए, देवता एक तरफ असुर दूसरे तरफ। दूध के समुद्र का मंथन कर रहे थे, जामवंत ने सब औषधियां समुद्र में डाली थी, पहाड़ मंदराचल सोने का था, उठ नहीं रहा था, भगवान ने गरुड़ के आकर आके पहाड़ को लाए, नीचे जा रहा था सारा पर्वत मंदराचल, भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, कच्छप टाटाइज का, और समुद्र को धारण किया। एक तरफ असुर एक तरफ देवता खींच रहे हैं, काम दोनों ने एक जैसा किया, मेहनत दोनों ने बराबर की, लेकिन फल दोनों को अलग मिला। देवताओं को अमृत मिला और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। ऐसे दुनिया में भगवान के आज्ञा से काम करने वाले को फल मिलता है, मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन फल देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला। एक ही काम एक ही जगह कर रहे थे लेकिन फल में अंतर है। गाय है ना, गाय के स्तन है जहां से दूध निकलता है, गाय का बछड़ा उसी स्तन से दूध पीता है, उसी स्तन के ऊपर एक इतना बड़ा जीव होता है, उसी स्तन जिसमें दूध है वहां से खून पीता है, जगह वही है लेकिन एक को दूध मिलता है और एक को खून मिलता है। तो असुर जो होते हैं संसार में हमेशा दुख पाते हैं और भगवान के भक्त अमृत पाते हैं। इसके बाद कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वचन दिया है तो वचन के ऊपर सत्य करना, उसको करने के लिए कोई भी कष्ट दुनिया में उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, गुरु मना करे तो भी, भगवान कष्ट दे तो भी सहना चाहिए। यहां बलि महाराज का चरित्र है। बलि ने वामन देव को वचन दे दिया था 3 कदम जमीन देने का। कथा बहुत बड़ी है लेकिन इसको भी आज नहीं कर पाएंगे जल्दी में, लेकिन कथा बताते ही है वचन करे आदमी तो उसके ऊपर सत्य रहे। ये रामायण का बहुत सुंदर एक ये शब्द हमेशा हर आदमी कहता है, क्या, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए वचन न जाए। ये पुरानी परंपरा है, आदमी को अपने वचन के ऊपर प्राण देते थे अपने वचन का पालन करने के लिए, और बलि महाराज ऐसा है जिसने अपने वचन को पालन किया। भगवान छल करने के लिए आए, भगवान छल से 3 पांव की जमीन में 3 लोक ले लिए। अब यहां गंगा के अवतरण की बात करते हैं। गंगा कहां से आई? जब वामन देव भगवान छोटा रूप है उसको वामन बोलते हैं, ये कश्यप और आदिति के बेटे हैं, छोटे से बालक हैं। आदिति ने प्रार्थना की थी कश्यप को एक बार, कश्यप बाहर कहीं प्रचार करने गए थे, वापस घर में आए तो आदिति को दुखी देखा, पत्नी से पूछा दुखी क्यों है, पूजा नहीं हुई, अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, दीप नहीं हुआ, तुलसी की पूजा नहीं हुई घर में, यज्ञ आदि नहीं हुआ। बोले ये सब तो किया है मैंने लेकिन मेरे पुत्रों को देखे बहुत समय हो गया, इंद्र आदि अपना आसन छोड़ के चले गए हैं। बलि महाराज ने इंद्र का आसन खाली कर दिया। कश्यप समझ गया, बोला एक पयो व्रत है उसमें दूध पीना है, 15 दिन का ये व्रत करो, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। आदिति ने पयो व्रत किया, दूध पिया, केवल भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु ने दर्शन देके कहा, मां मैं आपकी इच्छा को जानता हूं लेकिन आज बलि महाराज धर्म के ऊपर है, ब्राह्मण उसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे मैं भी उसको अपने पद से नहीं हटा सकता, लेकिन आपकी भक्ति से इतना संतुष्ट हुआ हूं कि मैं उस बलि से आपके बेटों की रक्षा करने के लिए मुझे आपका बेटा बनना पड़ेगा। अब आप आज से मेरा ध्यान करो अपने पत्नी पति कश्यप के रूप में। और तब कश्यप, और किसी को ये बताना नहीं, अब भगवान कश्यप के हृदय में आए, कश्यप के हृदय से भगवान आदित्य के हृदय में आए, और समय आने के ऊपर भगवान वामन देव का प्रकट हुआ छोटे से बालक के रूप में। उसको सारे देवताओं ने आकर गिफ्ट दिए, भीख मांगने का पात्र कुबेर जी ने दिया, माँ भगवती दुर्गा ने उसमें पहली भिक्षा डाली, और चरम सूर्य देव ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने जनेऊ पहलाया, ऐसे हरेक देवता ने उसको सब छाता दिया हाथ में, कनमंडलु दिया, और ये वामन देव वहां से बलि के यज्ञशाला में गया। कहाँ बलि यज्ञ कर रहा था? भृगु कच्छ में, भृगुवंशी ब्राह्मण उनसे यज्ञ करा रहे थे। क्यों यज्ञ करा रहे थे? क्या अभी तो तुमने सड़क के ऊपर अपने बल से इंद्र को भगा दिया है, लेकिन ये तो इलीगल है आपका सड़क के ऊपर शासन, हम आपको असली इंद्र बनाना चाहते हैं, 100 यज्ञ करेंगे फिर आप इंद्र बन जाएंगे। तो 100 यज्ञ हो रहे थे भृगु कच्छ में, वो नर्मदा नदी के किनारे पे बरूज के नाम से अभी भी है, जाके गुजरात में बॉम्बे से जब जाते हैं तो रास्ते में बरूज आता है एक स्टेशन, वो बरूज स्टेशन भृगु कच्छ उसको पहले कहते थे। तो वहां यज्ञ हो रहा था, वामन देव जब यहां पहुंचे तो ब्राह्मण सब आश्चर्यचकित हो गए, ये तो सूर्य सुबह हो गया, ये और प्रकाश कहां से आ रहा है? वामन देव को आते सब उठ के खड़े हो गए, आज बलि महाराज कहते हैं आप जैसा ब्राह्मण हमारे पास आया है, हम धन्य हो गए। क्या चाहिए? धन चाहिए, जमीन चाहिए, बाली के घर। बलि महाराज के पास आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, एक बार मांगता है, कहीं और मांगने नहीं पड़ता। आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए, धन चाहिए, गाय चाहिए, आपका विवाह करना है, ब्राह्मण लड़की दे, क्या करे? वामन देव कहते हैं मुझे कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। लेकिन बाली की प्रशंसा करने लगा, अरे आप बाली, आपके पिता विरोचन, उसके पिता प्रहलाद, उसके पिता हिरण्याकश, ये आपका कुल सब दानी बड़े महान हुए हैं, प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए थे, आपके घर से कौन खाली जा सकता है? लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं, मुझे केवल 3 कदम जमीन चाहिए, 3 स्टेप लैंड। बलि कहता है इतनी बड़ी बातें तो पंडित जैसी करते हैं, मांगने तो तुम्हें आता नहीं है, अरे 3 कदम तुम्हारे छोटे में क्या होगा? तब शुक्राचार्य गुरु उठ के कहते हैं इसको पहचानते नहीं हो, ये विष्णु है, ये 3 कदम में सब कुछ तुमसे ले लेगा, तुमने अभी तक ओम का उच्चारण नहीं किया, इसको ना कर दो। बलि महाराज कहता है मैं इसका चरण धोता हूं, मेरे घर में आया है विष्णु है तो मुझसे मांग रहा है ना, तो मांग रहा है तो मेरे से छोटा ही हुआ ना, मैं देने वाला हुआ ना, फिर भी मेरा नाम तो होगा, अब मैं अपने वचन से हटने वाला नहीं। बलि महाराज ने संकल्प किया कि मैं 3 कदम जमीन देता हूं। वामन देव एकदम बड़े होने लगे, एक जमीन में ये सब लोक नाप लिए, दूसरे में स्वर्ग लोक। जब स्वर्ग लोक से ऊपर वामन देव का पांव गया तो उधर एक पर्दा था, स्वर्ग लोक से सत्य लोक से ऊपर, उस पर्दे से वामन देव के राइट फुट के अंगूठे ने, बिग टो ने उसको तोड़ा तो जो कारण सागर का जल था वो नीचे गिरा, और उस वक्त ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने करमंडल में ले लिया और भगवान का चरण धोया, वो नीचे गंगा जी के रूप में गिरा। वो गंगा भगवान के चरण को धोती है इसलिए उसको विष्णुपदी बोलते हैं, गंगा का दूसरा नाम है विष्णुपदी, के विष्णु के पांव को धोया है वामन देव के। यहां बलि देव का, बलि महाराज की महानता देखो, जिसके चरण के अंगूठे को धोने से गंगा उतरी है, आज तक दुनिया उसके जल को सर के ऊपर धारण करके पवित्र होते हैं, बलि महाराज उसी वामन देव का अपने हाथ से चरण धो रहे थे। वो गंगा जो उसके पांव के धोने से ब्रह्मा जी के कर्मंडल में गई, शंकर के मस्तक के गई, वो जटाओं में गई, उसके बाद धरती के ऊपर आई, तब हमको मिलती है। लेकिन बलि महाराज को वही जल विष्णु के चरण का सीधा सर के ऊपर डालने के मिला, कितना बड़ा भाग्यशाली बलि महाराज हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो गंगा जल था भगवान के चरणों का, बलि महाराज को क्या मिल गया? आज बलि महाराज कहते हैं तीसरा पांव कहां रखा हूं, बड़े दानी हो रहे थे। बलि ने कहा मैं मेरे बाहुबल से ये धर 3 लोकों से, ये इंद्र के लोक तक तो मैंने खुद ने उसको अपने हाथों से जीता था, और मेरे यज्ञ से मैंने परलोक को धारण किया था, लेकिन इन दोनों को धारण करने वाला मैं तो बचा हूं ना, ये मेरे दिमाग की ताकत से मैंने सब किया था ना, आपका तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रखो। इसको कहते हैं अपने ईगो को सेक्रीफाइस करना। आदमी देता है लेकिन देने का ईगो रहता है, मैंने दान किया, लेकिन बाली अपने आप को कहता है बलि महाराज तीसरा चरण मेरे सर के ऊपर रखो। भगवान संतुष्ट होते हैं। बलि को वरुण फांस से बांधा जाता है, भगवान एक चरण बलि के सर के ऊपर रखते हैं, प्रहलाद ऊपर से आ जाते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, प्रहलाद बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान को कहते हैं सब कुछ आपका है, हम असुर इसको अपना मान के बैठते हैं, अच्छा हुआ आपने अपनी चीज ले ली। बलि को कहते तुमने अच्छा किया, सब कुछ भगवान को दे दिया। नवदा भक्ति में कल हमने आपको बताया था पाद सेवन का उदाहरण कौन है, पृथ्वी महाराज। आत्मनिवेदन भक्ति का नवा अंग है, उसका उदाहरण बलि महाराज है, जिसने सब कुछ अपना भगवान को अर्पण कर दिया। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं बलि, प्रहलाद को कहते हैं बलि आज तुम जीत गए, वचन के ऊपर सचे रहे, तुमने सब कुछ मुझे अर्पण कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने नीचे सूतल लोक बनवाया है जो स्वर्ग से भी अच्छा है, तुम वहां रहो, और प्रहलाद तुम इसके साथ जाकर इसको संग देना, और बलि आज से मैं तुम्हारे दरवाजे के ऊपर चौकीदार तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम आराम से बैठ के अंदर मेरा दर्शन करते रहना। जो एक बार भगवान को दिया तो भगवान उसके दरवाजे के ऊपर वॉचमैन होके खड़े हो गए। ये दिवाली के दूसरे दिन बलि दैत्य की पूजा होती है। बलि घर हर घर के बाहर बलि महाराज को बनाते हैं। बलि दैत्य की पूजा का दिन दूसरे दिन का है। तो छह महीने भगवान आज भी जो अभी है, ये चार महीने जा रहे हैं ना, ये चार महीने जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं होती है, कहते हैं भगवान बलि महाराज के सूतल लोक में। फिर भगवान ने कहा बलि नए मनवंतर में आप इंद्र बनेंगे। अब जो आठवां मनवंतर आएगा, ये सातवां चल रहा है, ये विवस्वत मनु इस वक्त राज कर रहे हैं, आठवें मनवंतर में बलि इंद्र बनेगा। तो ये बलि की कथा अब नवे स्कंद के अंदर 24 अध्यायों में, 12 अध्यायों में सूर्य वंश की कथा है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश की कथा है। ये दो क्षत्रियों के वंश चल रहे हैं। इन वंशों से सीखना क्या है, इतने बड़े महाराज हुए, अम्बरीश जैसा महाराज हुआ जिनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, भागीरथ जैसा महाराज हुआ जिसने गंगा को धरती के ऊपर लाया, लेकिन आज सब ये लोग कहां चले गए। इसका अर्थ क्या है, वैराग और त्याग सीखना चाहिए। इस संसार में इतने बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो हम सदा के लिए रह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति की वो सीखनी चाहिए। तो आज इसकी कथा में सूर्य वंश के अंदर हम सिर्फ एक तो भगवान राम का पूरा परिचय है इसमें 5 अध्यायों में, लेकिन हम सिर्फ गंगा अवतरण की कथा करते हैं। बाहुक नाम का एक राजा था, घर छोड़ के तपस्या करने चला गया, पत्नी उसकी साथ गई, वानप्रस्थी था। एक समय बाहुक का ध्यान देहांत हो गया, शरीर छोड़ा, अग्नि के अंदर पत्नी सती होने के लिए जा रही थी। ऋषि ने कहा आप सती नहीं हो सकती, आपके आपके गर्भ में बच्चा है और गर्भवती सती नहीं हो सकती। अब तो दूसरी रानियों ने देखा इसका बेटा राजा बन जाएगा, उसको विष दे दिया। लेकिन बाहुक की तपस्या इतनी की हुई थी, जब बच्चा हुआ तो एक तरफ बच्चा एक तरफ पॉइजन पड़ा था, तो पॉइजन को गर कहते हैं, इसलिए उसका नाम हो गया सगर, महाराज सगर। स मीन्स अलांग विथ, गर मीन्स पॉइजन, ए बेबी बार्न अलांग विथ पॉइजन, तो उसका नाम हुआ सगर। महाराज सगर दो शादी की, एक स्त्री से बच्चे पैदा हुए 60,000 और एक से एक लड़का अंजुष्मान। बलि सगर महाराज ने एक यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ का, घोड़ा चुरा के ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में किसी ने बांध दिया। 60,000 बेटे महाराज सगर के घोड़े को ढूंढने के लिए गए, घोड़ा कहीं नहीं मिला। ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा, बोला इस कहीं ऋषि ने चुराया होगा। ऋषि ध्यान में था, उन्होंने कहा तुम चोर हो। ऋषि ने आंखें खोली और ऋषि की आंखों की आग से 60,000 जल के भस्म हो गए उधर। अब दूसरा बेटा अंजुष्मान जो था, वो तो पहले से कोई बड़ा तपस्वी था, वो तो उसको देश निकाली दे दी पिता ने। उसका बेटा अंशुमान, ये पोता महाराज सगर का, अपने जो अंकल थे उनको ढूंढने के लिए गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखा, कपिल मुनि को प्रणाम किया, कपिल मुनि का आशीर्वाद दिया, बोला महाराज ये घोड़ा तो हमारे यज्ञ का है। बोला पता नहीं कौन बांध के गया, ले जाओ। तब पूछा हमारे अंकल इसको ढूंढते हुए आए थे ताऊ जी, बोला ये राख जो पड़ी है ये तुम्हारे ताऊजियों की है, उन्होंने, मैं ध्यान में था, उन्होंने वैष्णव अपराध करके मेरे ऊपर आक्रमण किया और मैं आंख खोली तो वो भस्म हो गए, जैसे शंकर भगवान ने आंख खोली थी और कामदेव भस्म हो गया था ऐसे ये भस्म हो गए। बोला इनका उद्धार कैसे होगा, इनको डिलीवर कैसे करें। बोला गंगा जी अगर धरती के ऊपर आएगी तो इनका उद्धार होगा। आज अंशुमान वहां से आया, अंशुमान राज अपने बेटे को देकर तपस्या करने गया गंगा को उतारने के लिए। अंशुमान का जीवन समाप्त हुआ, उनका बेटा दिलीप हुआ। महाराज दिलीप राज छोड़ के चला गया गंगा को लेने के लिए। दूसरी पीढ़ी की तपस्या हुई, गंगा नहीं आई, दिलीप का बेटा हुआ भागीरथ। भागीरथ में जाके तपस्या की, कहां, गंगोत्री में। कभी गंगोत्री जाएंगे तो वहां एक पत्थर है, उसको कहते हैं भागीरथी शिला, भागीरथ के बैठने का पत्थर, उसके ऊपर बैठ के उसने तपस्या की। आज उसकी तपस्या से 3 जनरेशन की तपस्या से गंगा माँ प्रसन्न हुई। माँ गंगा प्रकट हुई अपने रूप में, भागीरथ क्या चाहिए, माँ आप धरती के ऊपर आएंगी, हमारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करो, बोला मैं धरती पे ऊपर आऊं, दो समस्याएं हैं, टू प्रॉब्लम्स, एक तो मैं जब गिरूंगी तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, मुझे धारण कौन करेगा, और दूसरा पापी लोग मुझ में नहाएंगे तो मैं पवित्र कैसे होंगी। गंगा चली गई, भागीरथ चला गया वहां से कैलाश, केदारनाथ में, कैलाश में भगवान शंकर को प्रार्थना की, शंकर जी प्रसन्न होके, भागीरथ क्या चाहिए, बोला आप गंगा जी को धारण कीजिए जब नीचे उतरेगी तो, नहीं तो पाताल में चली जाएगी। शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी ने कहा गंगा जी को मैं धारण कर लूंगा। तब से गंगा जब नीचे गिरने लगी तो शंकर जी ने अपने जटाओं में धारण कर ली और शंकर जी का नाम एक हो गया गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था तो उसको गोवर्धन धारी कहते हैं, ऐसे भगवान शंकर को गंगाधर कहते हैं। अब ऋषियों को जाके प्रार्थना की, भागीरथ ने, ऋषियों ने कहा आप गंगा जी को कहना कि पापी आप में पाप छोड़ के जाएंगे, जब साधु आप में स्नान करेंगे तो आप फिर पवित्र हो जाओगे। फिर भागीरथ जाके गंगा जी का आवाहन किया, गंगा माँ नीचे उतरी, कहा माँ आपका पहला समस्या आपको धारण करेंगे भगवान शंकर अपनी जटाओं में, और दूसरा साधु संत आप में स्नान करेंगे, आपके किनारे के ऊपर रहेंगे, पापियों के पाप को धोके आपको पवित्र करते रहेंगे। अब गंगा जी नीचे उतरी, शंकर जी ने जटाओं में धारण किया और फिर आगे भागीरथ का रथ और पीछे गंगा चल रही है, रथ आगे गंगा चल रही है, एक स्थान के ऊपर भागीरथ मुड़ के देखता गंगा नहीं दिख रही, कहां चली गई। एक ऋषि बैठा था रास्ते में, उसका नाम था जानू ऋषि, जानू ऋषि का सामान पड़ा था पूजा का, गंगा बहा के चली गई और जानू ऋषि ने ऐसे उठा के गंगा को सारा पी लिया। भागीरथ मुड़ के कहता है महाराज जानू, गंगा, बोला वो तो मैंने पी ली, बोला तीन पीढ़ी की तपस्या से नीचे आई थी, गंगा सागर तक ले जाना है कपिल आश्रम में, हमारे पूर्वजों की राख उधर पड़ी है उसको तारना है। तब जानू ऋषि ने गंगा को वापस प्रकट किया तो वहां से गंगा का नाम है जाह्नवी। बंगाल में जब गंगा प्रवेश करती है तो उसका नाम जाह्नवी हो जाता है, और ऊपर से गंगोत्री से गंगा आती है तब उसका नाम भागीरथी है कि भागीरथ ने उसको उतारा था। और भागीरथी गंगा जब नीचे आती है और अलकनंदा से और मंदाकिनी से मिलती है तब उसका नाम गंगा होता है, हरिद्वार तक आती है तो गंगा होता है, और जब बंगाल से आप में जाती है तो उसका नाम होता है जाह्नवी। हम चेतना महाप्रभु का जब आरती गाते हैं तो पहला शब्द है जाह्नवी तट बने जग मन लोभा, मतलब गंगा जी के तट के ऊपर आप सबका मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ऐसे गंगा जी को भागीरथ ले गए गंगा सागर में, सागर के बेटों का उद्धार हुआ, तब से गंगा इस धरती के ऊपर पतितों को पावन कर रही है। कलयुग में 5000 साल तक गंगा अपने प्रभाव से पापियों के पाप धोगी, 5000 साल पूरे हो गए हैं। आज गंगा पिकनिक का स्थान हो गया है, आज हरिद्वार लोग पिकनिक करने जाते हैं, नहीं तो पहले लोग गंगोत्री जाते थे, 3-3 महीने घर से छुट्टी लेके गंगा का स्नान करने प्रेम से जाया करते थे। तो गंगा पहले कहां से उतरी, वो तो कारण सागर का जल भगवान के चरण धोए तो पहला द्रुलोक में गया, और द्रुलोक से देवता अपने विमानों में उस जल को लेके अपने अपने लोक में आए, और वहां से फिर धरती के ऊपर गंगा उतर के आए। तो अभी 21 तारीख को आपका गंगा स्नान है, सागर में जाते हो तो ये सागर, इसी के अंदर गंगा आके मिलती है, तो इस सागर के जल में गंगा का जल मिला हुआ है, लेकिन वहां किस भाव से गंगा में स्नान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, माँ गंगा आपने भगवान विष्णु वामन देव का चरण धोया है, आप भगवान के चरण का जल हो, आपको ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल में सदा धारण करके रखते हैं, शंकर जी आपको अपनी जटाओं में धारण करते हैं, आप हम अधम का उद्धार करके हमारा पाप धोइए। वहां पिकनिक के लिए मत जाइए, गंगा का ध्यान कीजिए, ऐसे इस गंगा के उतरने की पूरी कथा की स्मृति कीजिए, और फिर वहां बैठ के गंगा का आवाहन करके ध्यान करके और नहा के गंगा को याद कीजिए। असल में ये कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भारत के अंदर लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, इसलिए अभी यहाँ आप लोगों के पूर्वजों ने गंगा को याद करके समुन्द्र में जाके स्नान करना शुरू किया था, अच्छा है कि एक त्यौहार को वो याद कर रहे हैं। तो ये सूर्य वंश के अंदर महाराज भागीरथ गंगा को धरती के ऊपर लाए थे। आगे चंद्रवंश की कथा होती है, चंद्रवंश की कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है। तो अब ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, आज का टाइम अभी 9 बजा होगा मेरे ख्याल में, क्या टाइम हुआ है? 9 प्लस है या 9? वन आवर एंड 15 मिनट्स मेरे हो गए हैं। तो बहुत सुंदर कथा है चंद्रवंश के अंदर राजाओं की, अद्भुत राजाओं की कथा है। महाराज कुरु, महाराज पुरु और उसका वंश आगे चलता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रकट्य तक 9वां स्कंद है, फिर 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य होता है। तो अब क्या करना चाहिए? कहाँ गए पतु जी, क्या करें? अभी सबका प्रसाद बंद कर दिया है, अब यहां कथा को बंद करें और सब प्रसाद पाओ। हाँ, क्या बोला? अब कुछ सुनना, मैं बहुत एक स्कंद के ऊपर 2-3 घंटे बोलना होता है, हम उसको बहुत छोटा छोटा करके आपको जल्दी में बोल दिया है। आज अभी क्या बताएं आपको, क्या बताएं अभी? 15 मिनट्स मोर। चंद्र वंश के अंदर महाराज ययाति और महाराज पुरु, कुरु और यदु, महाराज यदु आगे होते हैं और यदु वंश से यदु, महाराज यदु से यदु वंश चलता है और उस यदु वंश में आगे चलकर महाराज ये 3-4 यदु वंश के अंदर आगे चल के वृष्णी वंश होता है, भोज वंश होता है, अंधक वंश होता है, ये सब यदु वंश कहलाते हैं। इसमें कथा सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू नहीं किया है, उससे पहले परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि आपने बहुत अच्छा चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा की थी कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, भीष्म द्रोण कर्ण आदि महारथियों के बीच में कैसे मेरे पिताजी की रक्षा की थी पितामह अर्जुन की श्री कृष्ण ने, और पितामह की तो की थी रक्षा, लेकिन मेरे को भी मेरी मां के गर्भ में जिसने रक्षा करके बचाया था, उसकी मुझे और कथा विस्तार से सुनाओ। और दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि आपने बताया था कि बलराम जी देवकी का भी बेटा है और बलराम जी रोहिणी का भी बेटा है, तो एक ही बेटा 2 माओं का कैसे हो सकता है बगैर शरीर छोड़े? तो ये प्रश्न जब पूछा और फिर कहा हाथ जोड़ के परीक्षित महाराज ने कि आप जैसा साधु मिले तो हरि कथा सुननी चाहिए, आप निर्वर्त त्रिशय उपगीय मानाय भव औषधि मनोभिरामा, आपके मुख से कथा दुनिया के जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको मुक्त कर दे। दवाई डॉक्टर सब देते हैं लेकिन हार्ट का ऑपरेशन सब नहीं कर सकते, ऐसे मंदिरों के अंदर घंटियां सब बजाते हैं लेकिन दिल बदलने की कथा सुखदेव महाराज आप कर सकते हो। दिल को बदल दोगे, अब दिल दुनिया के पीछे लगी हुई है, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई कहां गिरा, ये दिल जिसके कटे फटे हुए हैं, इन दिल को साफ ठीक करके भगवान को इस दिल में बिठाना, ये आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वो साधु संत केवल भगवान की भक्ति दे सकते हैं, रिचुअल करने से कोई भगवान की भक्ति नहीं मिलती है। तब सुखदेव महाराज कहते हैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति त्रियम, वासुदेव के विषय में कोई प्रश्न पूछे तो 3 को पवित्र करता है। पृष्ठतम जो पूछता है, श्रोत्रम जो सुनता है एंड वक्तारम जो बोलता है। जैसे आप भक्तों ने, यहाँ के भक्त संघ ने, पतुवादी जो सारे मिलकर आपने भागवत की कथा रखी, तो ये प्रश्न पूछा, पूछने वाले हो गए। आप लोग सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, तीनों को पवित्र करती है भगवान की कथा। जैसे गंगा स्वर्ग लोक को पवित्र करती है, धरती के ऊपर आयु और पाताल को भी पवित्र करती है, यथा सलीलम, जैसे गंगा पवित्र करती है, ऐसे कृष्ण कथा तीनों को पवित्र करती है। और एकदम सुखदेव महाराज बोलने लगे। एक समय की बात है, महाराज वसुदेव का विवाह हुआ, और किससे हुआ? देवकी के साथ हुआ, देवक की बेटी के साथ। बड़े उत्सव के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद रथ के ऊपर देवकी और वसुदेव चढ़े, तब उनका कजन ब्रदर कंस कह रहा था, मैं बहन को छोड़ने जाऊंगा, और रथ का सारथी बन के बैठ गया। बहन से प्रेम करता था, लेकिन था असुरी स्वभाव का। कालनेमी नाम का एक असुर था, कालनेमी नाम का असुर था, वो उग्रसेन महाराज और पद्मावती उसकी पत्नी उसके उदर के अंदर प्रवेश किया था, जो कंस के रूप में था, कालनेमी असुर। वो जब रास्ते में जा रहा है अपने देवकी और वसुदेव के दोनों नई विवाह किए हुए दंपति को लेकर, उस वक्त आकाशवाणी हुई, कंस मूरख, जिसको तुम प्रेम से रथ चला के जा रहे हो, इसका आठवां गर्भ तुम्हारा मृत्यु होगा। कंस का प्रेम एक मिनट में स्प्रिट की तरह उड़ गया, कपूर की तरह जल गया, प्रेम समाप्त हो गया। क्रोध में देवकी के बाल पकड़ के तलवार निकाल के मारने को लगा। देवकी शांत, न रोई न चिल्लाई, न वसुदेव को कहा कि मेरी रक्षा करो, अभी तो शादी हुई है, रिलेशन भी डेवलप नहीं हुए हैं, उनको भी नहीं कह पाई, न भाई को कहती है मेरे को मारो, मेरे को मत मारो। शांत खड़ी है एकांत में, मृत्यु का कोई भय नहीं है। जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। ये देवकी का सुंदर रूप है। लेकिन वसुदेव ने कहा, मेरा धर्म है मेरी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। पहले तो समझाने का प्रयास किया, शाम दाम दंड, लेकिन अंत में कहा कि ये से मानने वाला नहीं है। तब वसुदेव ने कह दिया कि इस देवकी से तो आपको भय नहीं है ना, इसके संतान से भय है ना, तो मैं आपको वचन देता हूं वसुदेव कि इसका हर बच्चा मैं आपके हवाले करूंगा। वसुदेव का जन्म हुआ था, उस वक्त देवताओं की दुमदुबियां अपने आप बज गई थी, ढोलक बजे थे, इसीलिए वसुदेव का एक नाम था अनंक दुमदुबी। वसुदेव का दूसरा नाम है अनंक दुमदुबी। इसका मतलब जिसके जन्म के ऊपर देवता आनंद में मगन होके मृदंग खरताल और दुमदुबियां बजाई थी। क्यों? बोला इसके घर में भगवान आएंगे। आज वसुदेव ने कहा, वसुदेव के वचन के ऊपर कंस को भी विश्वास था, लेकिन वसुदेव ने कहा बड़ी होशियारी से था। संस्कृत में उसने कहा, आपको सब बच्चे दे दूंगा इसका, लेकिन जो जिससे भय है वो नहीं दूंगा, उसको छोड़ के बाकी सब दूंगा। कंस मान गया, वसुदेव अपने घर गए, कंस अपने घर गया, पहला बालक हुआ देवकी को, वसुदेव उठा के कंस को दिया। कंस ने बालक को देखा, बोला इससे मुझे डर नहीं है, आठवें से डर है, ले जाओ इसको वापस। वसुदेव कहता, ये विश्वास करने जैसा है तो नहीं, लेकिन अब ठीक है, छोड़ता है तो जा रहा हूं। इतनी देर में नारद नीचे उतर के आया, कंस आप बड़े दयालु लग रहे हो, मैं अभी स्वर्ग से आ रहा था, सारे देवता यदुवंश में अवतार ले रहे थे, और ऊपर से बहुत बड़ा प्लान बन रहा था आपको मारने का, कि भगवान विष्णु को आप नहीं पहचान सकते हो कि आठवां कौन है और पहला कौन है। ऐसे उंगलियां खड़ी करके नारद बोला, तुम जरा गिन के दिखाओ तो, 1 2 3 4 7 8। बोला अब यहां से गिनो तो 8 1 हो गया कि नहीं हो गया, तुम नहीं समझ सकते हो। अब कंस का दिमाग, बोला नारद ने ऐसे क्यों किया, नारद ने कंस को देवकी के बच्चों मारने के लिए ऐसे क्यों उकसाया? बोला इसलिए कि जब तक कंस अगर दयालु हो गया तो भगवान को आने में देर हो जाएगी, इसलिए जब कंस क्रूरता करेगा तब भगवान पाप का घड़ा भरेगा, तब भगवान आएगा। और फिर कंस ने जाकर उस बच्चे को लाया और पत्थर के ऊपर मारा, और देवकी और वसुदेव को कारागृह में जेल में बंद कर दिया। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, 5 और बच्चों को भी देवकी ने जन्म दिया, और उन 5 को भी कंस ने उधर ही उसकी आंखों के सामने मारा। 6 को जब समाप्त कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सैया को कुर्स, जैसे कोई आदमी यहां अब कथा करनी है तो आपने कुर्सी रखी है, तो आदमी आएगा उधर बैठेगा, तो जब भगवान को आना है तो उसका आसन आना चाहिए ना, तो भगवान किसके ऊपर बैठते हैं, शेष सैया के ऊपर। भगवान किसके ऊपर बैठते हैं, शेष सैया के ऊपर। तो आज बलराम जी शेष सैया को भगवान ने मां देवकी के गर्भ में रवाना किया, और जब शेष वहां आया तो गर्भ को तैयार किया भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए। लेकिन देवी को आवाहन करके योग माया को भगवान ने कहा, आप जाओ देवकी के गर्भ से, इस सातवें बालक का नाम संकृष्ण है, बलराम है, इसको यहां से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर लो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं आप ये कर लोगी, और दूसरा काम ये करना मेरी छोटी बहन के रूप में यशोदा के घर में तुम प्रकट होना, ये दो तुम सेवाएं करोगी मेरी, आज के बाद तुम्हारी पूजा भारतवर्ष में विंध्या पर्वत के ऊपर होगी, वैष्णवी के नाम से होगी, दुर्गा के नाम से होगी, काली के नाम से होगी, और ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिया भागवत में दुर्गा को। और फिर छह बच्चे मारे गए, सातवां बलराम जी आया, बलराम जी को योग माया ने रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। लोगों ने कहा देवकी का सातवां गर्भ पात हो गया, कंस को सब बुरा कहने लगे कि गर्भ गिरा दिया। अब यहां ये छह कौन थे बालक, एक दिन द्वारका में बैठी हुई देवकी श्री कृष्ण और बलराम को कहती है, बेटा आपके गुरु सांदीपनी मणि का बेटा बहुत सालों से पहले शरीर छोड़ के चला गया था, और गुरु दक्षिणा में आपने सांदीपनी मणि के बेटे को लाकर दे दिया यमपुरी से, मैं मेरे छह बेटों को देखना चाहती हूं जिसको कंस ने मारा था मेरे आंखों के सामने। अब कृष्ण और बलराम चले गए कहां, सूतल लोक में जहां बलि महाराज रहता है। बलि महाराज ने दोनों का स्वागत किया, क्या सेवा करूं, बोलो ये छह जो आपके पास बेटे हैं ना ये ले जाएंगे हम, हमारी मां मांग रही है। तब पूछते हैं ये कौन है, बोलो ये मरीचि के बेटे थे देवता, देवता मरीचि के ये छह बेटे थे। एक बार ब्रह्मा जी ऋषि तो पैदा किए लेकिन एक लड़की पैदा की थी उसका नाम था वाक, और सुंदर लड़की को देखकर ब्रह्मा जी अपनी लड़की के पीछे भागने लगे, तब ये मरीचि के बेटे हंसे थे, इसलिए बड़े आदमी को हम समझ नहीं सकते हैं वो क्या कर रहा है, उस अपराध के कारण इसको असुर बनना पड़ा छह को, और ये हिरण्याकश के वहां असुर बने, और तपस्या करने गए तो हिरण्याकश को क्रोध आया, बोला मैं तुम्हें शराब देता हूं तुम्हारा पिता तुमको मारेगा, और ये काल नेमी के बेटे बनकर कंस के द्वारा अपने ही बेटे मारे गए थे। लेकिन आज जब ये वापस मैं ले जाऊंगा तो मेरी मां देवकी जब इसको स्तनपान कराएगी जिसको पहले मैंने पिया है कृष्ण कहते हैं, तो मेरा प्रसाद पी के वापस ये देवता हो जाएंगे। तो ये छह मरीचि के पुत्र थे, मरीचि मन का प्रतीक है, और मन के छह विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद मत्सर। जब तक भक्त के हृदय में ये छह विकार होते हैं तब तक भगवान नहीं प्रकट होता है। जब कंस रूपी भय से भक्त के ये छह अवगुण नाश होते हैं तब हृदय में भगवान का प्रकट्य होता है। आज मां देवती देवकी देव रूपिणी हो गई है, भागवत लिखती है भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान जो विश्व आत्मा है, विश्व आत्मा का अर्थ है जो सबसे प्रेम करता है, सबके हृदय में विराजमान होता है, काम क्या करता है भक्तानाम अभयंकर, अपने भक्तों के भय को नाश करता है। आवेश आए प्रवेश किया कहां, मन अनंक दुमदुभी, वासुदेव के मन में भगवान ने प्रवेश किया। अंश भागेन का मतलब अपने जितने पहले विष्णु के अवतार है उन सबको अपने अंदर समा किया है, परी सब अवतार भगवान विष्णु से आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु का भी स्रोत है, विष्णु भी उससे निकलते हैं, इसलिए परिपूर्ण भगवान उसको कहते हैं जिसमें सारे विष्णु के अवतार समा जाए आकर। तो आज श्री कृष्ण में सारे विष्णु के रूप समाये हुए हैं, और वो प्रवेश किए, और फिर दूसरा श्लोक कहते हैं वासुदेव के मन से देवकी के हृदय में भगवान प्रवेश हुए। जैसे सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा उगता है और प्रकाश देता है, ऐसे आज देवकी प्रकाशमान हो गई। इसके ऊपर लिखा है कि कोई स्त्री पुरुष के मिलने से भगवान का जन्म नहीं होता है, भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जब गुरु जी अपने शिष्य को भगवान का मंत्र देता है तो अपने हृदय में प्रकट किया हुआ भगवान कानों के द्वारा उसके दिल में स्थापित करता है। इसी को इनिशिएशन बोलते हैं। और वासुदेव ने मानो देवकी को इनिशिएट किया, उसको भगवान उसके हृदय में स्थापित कर दिया। अब देवकी सुंदर लगने लगी। कंस आया, देवकी को देखकर आश्चर्य हुआ, अरे इस देवकी को मैं रोज देखता हूं, आज इसमें प्रकाश लग रहा है, लगता है कि मेरे मारने वाला इसके उदर में आ गया है, लेकिन मैं एक स्त्री को कैसे मारूं, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। आज कंस केवल भगवान देवकी के हृदय में आया है तो कंस का मन बदल गया। इसका अर्थ क्या है? अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान हमारे हृदय में आएंगे, तो बड़े से बड़ा पापी अपराधी क्रूर हमारे सामने आएगा और उसका मन बदल जाएगा। कंस चला गया। समय जब आया, उससे पहले देवता सारे अंदर आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्र आए, नारद आए, सबने मां देवकी के गर्भ के अंदर प्रार्थना की, भगवान आपके वचन को सत्य करने के लिए हमको कहा था आने के लिए, आप सत्य वचन है आपका, सत्य व्रत धारण करते हैं, आप सत्य हैं, आप आ गए हैं, हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, आपके आने से सब लोगों का कल्याण होगा। देवता सब प्रार्थना करने लगे। वैसे गर्भ में आने को बहुत बुरा माना जाता है, आदमी गर्भ में आया है जन्म मृत्यु में, लेकिन भगवान जब गर्भ में भी आते हैं तो देवता प्रार्थना करने के लिए आते हैं। देवता प्रार्थना करने चले गए। उस वक्त देवकी और वसुदेव अचानक देखते हैं, अरे ये तो बड़ा अद्भुत बालक है, प्रकट कैसे हुआ? चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा हाथों में लिया हुआ है, पद्म, और सर के ऊपर बहुत सुंदर मुकुट है, कानों में कुंडल है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, ये तो बड़ा अद्भुत बालक है। अद्भुत बालकम चतुर्भुजम, शंख चक्र गदा हाथ में लिया हुआ है। वासुदेव ने प्रार्थना करना शुरू किया, माँ देवकी ने प्रार्थना की, तब भगवान बोलने लगे, आप दोनों ने तपस्या की थी, मेरे को अपना बेटा बेटे के रूप में माना था, लेकिन मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने वचन साथ करने के लिए, सच करने के लिए मैं आपका तीन बार बेटा बना, पहले पृष्णी गर्भा बना था आपका, दोबारा वामन देव बना, आप आदित्य और कश्यप थे, और आज वसुदेव और देवकी तीसरी बार आपका बेटा बन के आ रहा हूं। अब आपको डर लगता है अगर कंस का यहां, तो मेरे को वसुदेव यहां से उठाओ और तुम मेरे को गोकुल में मां यशोदा की गोद में छोड़ के आओ, वहां एक बच्ची है उसको तुम यहां लेकर आओ। ये जन्म लेने से पहले भगवान ने वसुदेव अपने पिता को आदेश दिया, ऑर्डर दिया, मेरे को यहां से ले चलो। और जैसे ही देवकी ने प्रार्थना की कि भगवान ये चार हाथों वाला रूप अपना छुपा दो, आप अपने स्वकम बालक के रूप में हो जाओ, आप को ये रूप देख के लोग हंसी उड़ाएंगे, तो भगवान छोटे बालक बन गए। और जैसे भगवान बालक बनने और वसुदेव ने जैसे कृष्ण को उठा के छाती से लगाया, वसुदेव के हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पांव की बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। इसका अर्थ क्या है? जो हृदय में भगवान को धारण कर लेता है, कृष्ण वाहक वासुदेव, वाहक कहते हैं वाहन को, गाड़ी को, जो कृष्ण को अपने दिल में ढोता है, उठाता है, उसके लिए सब बंधन खुल जाते हैं, उसके लिए कोई रुकावट बाजकी नहीं बचती है। और जैसे वासुदेव बाहर निकला, बरसात हो रही थी, शेषनाग ने रक्षा ऊपर से छाता बना दिया, जमुना ने रास्ता दे दिया, और गोकुल में यशोदा मैया के पास इस छोटे बालक को छोड़ के और कन्या को लेके वसुदेव वापस आए। दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां पलंगी, लड़की रोई, पहरेदार जागे, कंस भागता हुआ आया, लड़की को देखा, आज देवकी ने आज तक छह बालक मारे, कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज देवकी कहती है, भैया ये लड़का नहीं है, लड़की है, इसको मत मारो, ये मेरा आखिरी संतान है, मैं ये बड़ी होगी तेरे बेटे को विवाह के दे दूंगी, लेकिन इसको मारो मत। ऐसे क्यों आज देवकी कह रही है? देवकी कहेंगे, लोग कहेंगे कि पराई बेटी है, यशोदा की बेटी है, और कंस के हाथ में दे रही है, इसलिए प्रार्थना करके लड़की को छोड़ नहीं रही थी। कंस ने छीन के लड़की को पत्थर के ऊपर मारा, कंस के हाथ से लड़की निकली, आठ हाथ भुजाएं धारण कर ली और देवी के रूप में उससे कहा, मूर्ख तुम्हें मारना वाला पहले ही पैदा हो चुका है। कंस डर गया, देवी से इतना डरा कंस, पकड़ लिए पांव वसुदेव को, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, ये तो देवताओं ने मेरे को गलत रास्ता बताया, उन्होंने ये आकाशवाणी की, मैं तो आपका कभी अहित नहीं करता, मुझे आप लोग सब क्षमा कर दीजिए, आप जेल से आजाद हो, यहाँ से चले जाओ। एक दो घंटे के लिए कंस देवी की वाणी सुन के सुधर गया, वसुदेव देवकी अपने घर गए। शाम वापस जब गया, सुबह मीटिंग करके चारणों मुष्टिक आदि सब आए, और खल ये तोषण और पूतना और बकासुर और अघासुर सारे मंत्री आए। बोला, महाराज आप क्यों डरते हो, देवता तो आपसे कांपते हैं और भगवान शंकर तो ध्यान में रहते हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, बाकी रह गया विष्णु एक ना, कहाँ रहता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ ब्राह्मण होते हैं, जहाँ गाय होती है, वही विष्णु रहता है ना। अब ना हम ब्राह्मण को छोड़ेंगे, न गाय को छोड़ेंगे, न कथा को छोड़ेंगे, तो विष्णु कहाँ रहेगा, अपने आप मर जाएगा। और बालक अगर पैदा हो गया है तो आज से 10 दिन के अंदर जो भी बालक पैदा हुए सबको मारने का आर्डर दे देते। अब कंस की तरफ से ये इधर से आर्डर शुरू हो गया और ये अत्याचार कंस के शुरू हो गए। और वहां सुबह होते ही यशोदा मैया के वहां 12 बजे देखें कि अरे लड़का पैदा हो गया। नंद के आनंद भयो, दूसरे दिन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे गाने लगे। नंद बाबा ने बहुत दान दिया ब्राह्मणों को, इतना दान दिया दिल खोल के कि नंद का नाम हो गया महामना। महामना का मतलब जितना अपने पास है उससे ज्यादा देने की दिल खोल दे। और उस दिन बहुत बड़ा गोपों के अंदर आनंद का मंगल हुआ और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया। भगवान आप सबके घर में ऐसे उत्सव मनाए, इसलिए आप यहाँ से भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ भगवान के नाम के रूप में ले जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये मंत्र एक अपने साथ ले जाइए, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, ये गोद में आप अपने साथ ले जाए, अब आपके सब संकट दूर हो जाएंगे, मानव जन्म सफल हो जाएगा। ये मंत्र जपिए और सुखी रहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।